चंद्रिका लब्धि सार क्षपणा सार लेक्चर नंबर 2। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोए सवसाहुं सम्यक दर्शन चरण गुण केवल ज्ञान उपाय प्रभु दये भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा चरण धार केवल नेमी चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जास उजासते जाने निज गुण था लब्धि सार को पाय के करी के क्षपणा सा समय सार अभिकार। आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है, उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने ये सम्य ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद हम देख रहे हैं और हम उसमें आए हैं पृष्ठ संख्या 12 पर। यहाँ पंडित टोडरमल जी स्वयं लब्धिसार भूमिका लिख रहे हैं। कल हमने पढ़ना शुरू किया था कि कर्मों की 10 अवस्थाएं होती है। ये 10 अवस्थाएं याद है ना? अविरज भाई बताएंगे। हाँ, बंद बंद सत्व, हाँ हाँ, संक्रमण उपशम, बहुत अच्छा। देखो, बंध सत्व, उदय उदीर्ण, उत्कर्षण अपकर्षण, संक्रमण उपशम, निधत्य और निकाचन, ये 10 कर्ण और इनका स्वरूप हमने विस्तार से कर्मकांड में देखा भी था। अब यहाँ इसका अर्थ समझा रहे हैं, ये जो 10 हमने नाम अभी देखे कर्मों की अवस्थाएं, जिसको कर्ण कहते हैं, ये कर्ण परिणाम जो है समय दर्शन के पूर्व वो अलग, ये 10 कर्ण ने कर्मों की 10 अलग अलग अवस्थाएं हैं। उसमें से बंद किसको कहना, तो जो कारमान योग कारमान वर्गणा है कर्मरूप परिणमने के योग्य, वो कर्मरूप परिणमित हो जाती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, बंद। आत्मा के साथ संबंध होता है तो वो 4 प्रकार का देखा था। कौन से 4 प्रकार? हाँ, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो कहते जितने परमाणु बनते हैं तो कितने बनते हैं, तो अनंत कारमाण वर्गणा एक समय में कर्म रूप होती है और एक एक कारमाण वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं। उस अनंत का प्रमाण क्या है, तो अभोव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण, ऐसा जो कोई पर्टिकुलर अनंत है उतने, इसको कहेंगे समय प्रबद्ध। तो समय प्रबद्ध की हीनाधिकता क्यों होती है, किस निमित्त से, तो योग के निमित्त से। जहाँ योग ज्यादा है वहाँ समय प्रबद्ध में परमाणु की संख्या ज्यादा है।
यहाँ एक बात विशेष बता रहे हैं, एक समय प्रबद्ध को गिनाने के लिए उन्होंने ऐसा बताया है कि सिद्धों उसका अनंत वंश और अभव में से अनंत गुना ऐसे एक कारमाण और गणा
अन उतने ही परमाणु एक कारमाणु
अनंत मतलब
बात सही है, बात सही है। ये हमने अभव्य का अनंत सही है। यही बात हमने जो कर्मकांड में भी देखी थी, औदारिक शरीर के परमाणु कितने ग्रहण करते हैं, औदारिक शरीर का समय प्रबद्ध, तेजस शरीर का समय प्रबद्ध, कारमान शरीर का समय प्रबद्ध, उसमें भी ये बात हमने देखी। एक एक वर्गणा में इतने परमाणु और ऐसी ऐसी अनंत वर्गणा जीव ग्रहण करता एक समय में, उसी को समय प्रबद्ध कहते हैं। अब ये जो समय प्रबद्ध है, इतने परमाणु ग्रहण हुए या कर्मरूप परिणमित हुए, तो जो परिणमित हुए उसी समय उसके मूल प्रकृति रूप उसका परिणमन होता है और मूल प्रकृतियों में भी उत्तर प्रकृति रूप होगा। ऐसा नहीं कि बंद है बाद में वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाद में उत्तर प्रकृतियों में, ऐसा नहीं है। बनते समय ये सब हो जाता है ऑटोमेटिक, तो उसको उस प्रकृति का समय प्रबद्ध कहेंगे हम। अब कहते प्रदेश बंध किसको कहना, तो जो नंबर ऑफ परमाणु बनते हैं उसको हम कहेंगे प्रदेश बंध। प्रदेश यहाँ परमाणु को कहा है, पुद्गल परमाणु को यहाँ प्रदेश कहा है। एक प्रदेश है तो उसको प्रदेश कहेंगे। तो प्रदेश बंध का अर्थ है कितनी संख्या में परमाणु बंधे। अब जो स्थिति बंध जो है, तो यहाँ जो जिस समय बंधा है उस समय जो आबाधा छोड़कर ऊपर जो निषेक रचना होती है, अंतिम निषेक की जो स्थिति है उतनी उस समय का कर्म की स्थिति बंदी ऐसा करेंगे। स्थिति बंद कितना हुआ, तो जो मैक्सिमम ऊपर का जो निषेक है अंतिम निषेक उसकी जो स्थिति है वो उस समय के समय प्रबद्ध की स्थिति कहेंगे, इसको स्थिति बंद कहेंगे। हमने देखा अनंत जो परमाणु बनते हैं सब में एक समान स्थिति नहीं है, कितने ही परमाणु आबाधा प्लस एक समय, कितने की आबादा प्लस दो समय प्लस तीन समय, ऐसे अलग अलग जो निषेक रचना उसी के आधार से होती है, हर एक की अपनी अपनी स्थिति अलग अलग। परंतु स्थिति बंद हुआ तो कितना हुआ, तो जो मैक्सिमम हुआ उसको कहेंगे इतना स्थिति बंद हुआ। हमने उसका प्रोपोर्शन भी देखा था कि मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति है तो उसकी आबादा उस प्रोपोर्शन में 7000 वर्ष, यानी 70 कोड़ा कोड़ी के लिए 7000, तो एक कोड़ा कोड़ी के लिए 100 वर्ष की आबादा होती है। ये सभी कर्मों में यही प्रोपोर्शन है। अब जिसका 40 कोड़ा कोड़ी बनता है उसकी 4000 वर्ष की होगी, इस तरह से। परंतु आयु में कुछ विशेषता है वो अभी हम देखेंगे। 12 नंबर पृष्ठ पर नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें हम पांचवी लाइन पढ़ने जा रहे हैं। आयु के स्थितिबंध में आबाधा काल नहीं गिनते, यानी जितनी आयु बंदी है उतने ही निषेक बनते हैं। क्यों, आबाधा कहाँ चली जाती है, वर्तमान जो भोग रहे आयु उसको कहेंगे गुज्जमान आयु। गुज्जमान आयु समाप्त होने के पहले आगामी भोग की आयु बांधते हैं। ऐसा कोई जीव है जो आयु ही नहीं बांधता, सरला भी सिद्ध भगवान आयु का नहीं बांधता, दूसरे कर्म बांधते हैं। तो पहले बनता है, हमने पूछा अच्छा कौन जीव है जो आयु का बंध ही नहीं करता, चरम शरीर ही हम कहेंगे उसको, उस भव में जो मोक्ष जाने वाले जीव है, क्योंकि आयु का बंध होता है तो निश्चित रूप से वो आगामी आयु में, यानी वो तो जाएगा ही वहां। ऐसा नहीं कि कर्म बांधा और बाद में उसको क्षपणा कर दिया और नष्ट, ऐसा आयु के बारे में नहीं होगा। यहाँ कहते हैं आयु के स्थितिबंध में आबाधा काल नहीं गिनते। अन्य कर्मों का स्थितिबंध में नीचे आबाधा होती है, उसकी अपनी अपनी स्थिति ऊपर जो जितनी बंधी उतनी होती है। अब उसका कारण बताए, क्योंकि उसका आबाधा काल पूर्व पर्याय में ही व्यतीत होता है, पूर्व पर्याय पूर्व भव में, जिस भव में आगामी भव की आयु बंधी जाती है, तो मरण के जितने काल पहले आयु बंधी हो, मान लेते हैं कि मरण के पूर्व उसने 20 साल पहले आयु बांधी है, कितनी बांधी है, तो मान लेते 100 साल की बांधी है, तो 100 साल की आयु बांधी तो 100 साल के जितने समय उतने निषेक बनेंगे। अन्य कर्मों में क्या देखा था कि जितनी स्थिति बंधी उसमें से आबाधा काल में कोई निषेक रचना नहीं होती, और उसके बाद में वो निषेकों की जो स्थिति कहने में आएगी। यहाँ तो आयु का जो बंध हुआ है, जितने वर्षों का हुआ है, जितने समयों का हुआ, उतने निषेक बनेंगे, और आबाधा काल जिस समय आयु बंधी उस वहां से लेकर जिस पर्याय में बंधी न मरण तक का काल उसकी आबाधा गिनी जाएगी। वहां उस आयु के उदय होने योग्यपने का अभाव है, यानी जो हम आयु नहीं नहीं वो तो इस आयु की है, अभी अभी किसी ने 100 साल जिएगा, नए बहू की नहीं 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 देखो अभी इसने 20 साल पहले आयु बांधी, कोई 60 वर्ष का आदमी है, यानी 60 इस बहू की उसकी आयु कितनी है, तो 60 साल की है। अभी इस 60 साल में उसको आयु बंध का अवसर पहला कब होता है, त्रिभाग में 40 साल बीत गए और 20 साल बाकी है, तो इस बहू की उसके 20 साल बाकी है, तब उसने यहाँ आयु का बंध किया। कितना किया, आगामी बहू की आयु उसने 100 साल की बांधी, तो जितने आयु बांधी उतने उसके निषेक बने। अब आबादा कौन सी कह लेगी, ये 20 साल, इस बहू की जो है 20 साल, जब उसने आयु का बंध किया तब से लेकर मरण तक उसकी आबादा कहलाएगी। यानी ये आबादा जितनी स्थिति बंधी उसमें से कट नहीं होती, ये कहना चाहते, क्योंकि उसकी आयु का पहला समय, उस बहू का पहला समय वहां से शुरू होगा, जितनी बांधी उतना उदय काल होगा। देखो अन्य कर्मों में क्या होता है, हाँ हाँ जरूर बोलिए।
ऐसा है कोई 1 करोड़ की आयु हुई है और उसमें 1 करोड़ में 1/3 भाग बाकी है, ऊपर निकल गया जब आयु बांध गई, कौन सी दो पर्याप्त है, नदी और पर्याप्त है जीव, तो अभी वो जो 1/3 करोड़ है
तो उसका तो
ना वो बना लेते हैं, अगले भाव में उसको हम काटने को जाएंगे तो नहीं होगा, बात ख्याल में आएगा। तो वो जो आवाज़ आयु की जो होती है वो वर्तमान में जो विद्यमान आयु है उसमें हो।
देखो 7 कर्मों में क्या है, कितनी स्थिति है टोटल, उदय काल प्लस आबादा काल मिलकर, क्योंकि यहाँ उसने बंद किया, कितना किया तो 70 कोड़ी सागर का किया, परंतु उदय तो निषेक का होगा, यहाँ तो कोई निषेक ही नहीं है, तो उसका उदय काल कब से कहेंगे, आबादा के बाद 7000 वर्ष के बाद उसका उदय काल चालू हो गया, एक एक समय में एक एक निषेक पड़ा है, तो आबादा काल प्लस उदय काल मिलकर स्थिति कहेंगे, कर्मों का स्थिति बंध। आयु कर्म में क्या होगा, स्थिति जितना उसका स्थिति बंध है उतना ही उदय काल है, आबादा उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये बात ख्याल में। ये बंधने के बाद उसमें जो कुछ चेंजेस होते हैं उसकी बात नहीं, अभी बंध की बात चल रही है, बंध के समय में क्या पोजिशन है उसकी चर्चा चल रही है। देखो फिर मैं पढ़ती दोबारा, आयु के स्थितिबंध में आबाधा काल नहीं गिनते, क्योंकि उसका आबाधा काल पूर्व पर्याय में ही व्यतीत होता है, वहां उस आयु के उदय होने योग्यपने का अभाव है। यानी वो जो भांदी है वो इस भव में तो ये वर्तमान की जो हम भोग रहे आयु उसका उदय चल रहा है, एक समय 2 आयु उनका उदय नहीं होता, गति की बात अलग है आयु की बात अलग है, गति हमारे मनुष्य गति का उदय चल रहा है और सत्ता में अन्य गति के परमाणु पड़े उस रूप होकर उदय में आते हैं, आयु बस एक ही भोग की बंधी जाती है और जो बंधी है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते ना उसमें कोई संक्रमण होता है, इसलिए आयु के प्रथम निषेक की स्थिति एक समय। अन्य कर्मों में प्रथम निषेक की स्थिति कितनी कहेगी, आबादा प्लस एक समय, ये 7 कर्मों में, आयु में पहला निषेक तो पहली उसकी स्थिति एक समय वाली है, वो उस भव के पहले समय में उदय में आएगी। द्वितीय निषेक की 2 समय, इस क्रम से अंत निषेक की संपूर्ण स्थितिबंध मात्र स्थिति जानना, 100 साल की आयु बांधी है तो जो अंतिम निषेक बना है उसकी स्थिति 100 साल, 100 साल बाद वो उदय में आएगा, यानी जब उसका उदय शुरू होगा तब से लेकर। इस तरह एक समय में बंधी हुई स्थिति में विशेष जानना, ये एक समय में जो बंद होता है उसमें जो निषेकों की स्थिति है उसकी बात बताई। सामान्यपने अंत निषेक की स्थिति का जो प्रमाण है उसे वहां स्थिति बंध कहते हैं, क्योंकि सामान्य कथन में उत्कृष्ट का ग्रहण करते हैं। कितनी स्थिति बांधी तो जो मैक्सिमम ऊपर की जो स्थिति है उसको हम कहेंगे इतनी स्थिति बांधी। सामान्य क्यों कहा, क्योंकि हम देखते हैं इतने अनंत परमाणु बंधे हैं तो उसमें हर एक लॉट की स्थिति अलग अलग है। जो पहला निषेक है उसमें जो अनंत परमाणु है उनकी स्थिति कितनी, तो 7000 वर्ष और एक समय। बीच वाला कोई ऐसा होगा कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर उसकी स्थिति हो, कोई ऐसा है ऊपर का 60 कोड़ा कोड़ी, एक अंतिम निषेक की कितनी, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो उसका बंध कितना हुआ कहेंगे, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ये स्थिति बंध की बात है। अब कहते एक समय में बंधे हुए प्रकृति के समय प्रबद्ध के परमाणुओं में प्रथमादि निषेकों का विभाग, विभाग यानी विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यानी ये जो बंधे हैं परमाणु तो उसका पहला निषेक, दूसरा, तीसरा निषेक, अंतिम निषेक, तो इसमें कहां कितने परमाणु दिए जाते हैं, उसका विभाजन कैसे होता है, उसको जानने के लिए गोमरसार कर्मकांड के कर्म स्थिति रचना सद्भाव नामक अंत का अधिकार है। वहां द्रव्य, द्रव्य यानी टोटल नंबर ऑफ परमाणु जो समय प्रबद्ध है उसको द्रव्य कहेंगे, स्थिति जितने निषेक बने उसको स्थिति कहेंगे। स्थिति बंध अलग है और स्थिति अलग है, स्थिति ये गणित की टर्मिनोलॉजी है, जैसे हमने वो स्थिति के भेदों में भी उसको भी स्थिति कहा, व्यवसाय स्थानों को भी स्थिति कहा, जिसका जो विषय है वहां यही 2-4 नाम आएंगे, 6 नाम, द्रव्य, स्थिति, गुणानी, नाना गुणानी, अन्योन्य मिश्र राशि वगैरह, तो उसका वहां क्या मीनिंग है उस विषय में उसको समझना। यहां द्रव्य किसको कहना है, तो संपूर्ण जो नंबर ऑफ परमाणु टोटल समय प्रबद्ध उसको कहेंगे द्रव्य, जितने निषेक बने हैं उनको कहेंगे स्थिति, नंबर ऑफ जो निषेक है उसको कहेंगे स्थिति। गुणहानि, अब ये इसका जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नीचे के पहले निषेक में सबसे ज्यादा परमाणु होते हैं, ऊपर फिक्स डिफरेंस होता है, कम होते चले जाएंगे, जिसको चय कहते हैं, एक चय कम, फिर उसके ऊपर 2 चय कम, इस तरह से एक एक चय घटते चला जाएगा, जहां जाके आधा होता है उतने निषेकों को कहेंगे गुणहानि, एक गुणहानि। पूर्ण जितने निषेक बने हैं, जितने नंबर निषेक बने हैं उसको एक गुणहानि के प्रमाण का भाग देंगे तो हमें नंबर ऑफ गुणहानियां मिलेगी, जिसको हम कहेंगे नाना गुणहानि। जितनी नाना गुणहानि है उतनी बार 2 संख्या लिखकर आपस में गुणा करेंगे उसको कहेंगे अन्योन्याभ्यस्त राशि। एक गुणहानि को 2 गुणा करेंगे तो उसको कहेंगे 2 गुणहानि। तो यहां कहते वहां द्रव्य, स्थिति, गुणहानि, नाना गुणहानि, अन्योन्याभ्यस्त राशि और 2 गुणहानि का प्रमाण कहकर वहां विधान कहा है वह जानना। विधान कहा है ने वो चय कैसे निकालना, उसका प्रमाण कैसे निकालना, पहले निषेक में कितना द्रव्य, दूसरे में कितना, ये सब हमने अभी अभी विस्तार से देखा था, कर्मकांड में भी देखा, अभी कल पर से उसकी अर्थ संदृष्टि हुई तो वहां पर भी हमने उसकी रचना देखी थी। यहां भी आगे संक्षेप में विधान कहेंगे, ये तो यहां तो भूमिका के रूप में बता रहे हैं, जहां विषय शुरू हो जाएगा वहां इसकी भी कुछ बात आएगी। इन प्रथमादि निषेकों की रचना एक के ऊपर एक लिखते हैं, यानी प्रथम निषेक नीचे लिखेंगे, सबसे नीचे बंद का समय, वहां से लेकर आबाधा काल के लिए वैसे हम कहेंगे वो तो एक लकीर हुई, उसके ऊपर आड़ी रचना हम निषेकों की बताएंगे, पहला निषेक नीचे, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे नीचे से ऊपर, प्रथमादि यानी पहला, दूसरा, तीसरा, आदि से ऊपर तक। प्रथमादि निषेकों को नीचे के निषेक कहते हैं, पश्चात के निषेकों को ऊपर के निषेक कहते हैं ऐसा जानना। नीचे के लिए अधस्तन भी कहेंगे, कहीं कहीं शब्द आएगा, और ऊपर के लिए ऊपरी तन ऐसा भी कहेंगे। जहां जो शब्द आएंगे वहां उसका अर्थ करते जाएंगे हम, अभी तो यह सामान्य रूप से चर्चा चल रही है। तो नीचे के निषेक यानी पहले पहले, और ऊपर के यानी भविष्य में उदय आने योग्य, जो जिनकी स्थिति अधिक है वे ऊपर के निषेक कहलाएंगे। जैसे भाजन आदि के निमित्त से यानी पात्र के निमित्त से पुष्पादिक पदार्थ मदिरा रूप परिणमते हैं, उनमें ऐसी शक्ति होती है जो भक्षण काल में हीनादिक विशेष सहित पुरुष को उन्मत्तता उत्पन्न कराते हैं। ये तो हुआ दृष्टांत। क्या कहते हैं, विशिष्ट पात्र में पुष्प आदि जो पदार्थ जो है उनको सड़ाते गलाते हैं तो उसकी मदिरा बन जाती है, तो उसमें क्या होती है, ऐसी शक्ति होती है, शक्ति भी हीनादिक होती है, तो हीनादिक होती है तो भक्षण काल में उसका हीनादिक, उसका जो कहेंगे उन्मत्तता जो बनती है मदिरा का, मद्य पीने से जो नशा चढ़ती वो नशा हीनादिक होती है। हम लौकिक में सुनते हैं ना, कोई है बहुत स्ट्रांग वाली होती है, हाँ, तो कहते हैं हीनादिक उन्मत्तता उत्पन्न कराते वैसे। ये तो हुआ दृष्टांत। अब यहाँ कर्मों पर घटाना है। रागादि के निमित्त से, वहां भाजनादि के निमित्त से लिखा था, यहाँ रागादि के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप परिणमते है, वहां पुष्पादिक मदिरा रूप परिणमती, यहाँ पुद्गल यानी रॉ मटेरियल क्या है तो पुद्गल है। परिणमन किसने किया तो पुद्गल ने स्वयं कर्म रूप परिणमन किया, वो उसकी अपनी योग्यता से, निमित्त यहाँ रागादिक का। तो रागादिक के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप परिणमते है, उनमें ऐसी शक्ति होती है जो उदय काल में, उदय काल किसको कहना, ये तो अभी बंधे है, बनते समय तो उसका कोई फल नहीं है, जीव के साथ कोई निमित्त नहीं बन रहा, बंधने के बाद पड़े रहते उसको कहेंगे सत्व या सत्ता, तब भी उसका कुछ उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, बस वो पड़े हैं। जब अभी वो नीचे नीचे के निषेक हम कहेंगे उसके एक एक समय घटते चले जाएंगे तो इनका उदय शुरू हो जाएगा। जो वर्तमान समय में जो निषेक नीचे आया है उसको कहेंगे उदय रूप है। उदय क्यों कहना, क्योंकि वो अभी कर्म से अकर्म रूप हो जाएगा। पहले पुद्गल अकर्म रूप था, वो कर्म रूप हुआ था, अभी वो कब वो अकर्म रूप होगा, जब उसका उदय होगा, जब वो वर्तमान में पहला निषेक बनकर अभी उदय रूप होगा, तो वो जो कर्म रूप अवस्था थी वो नष्ट होकर अकर्म रूप हो जाएगा। उसका क्या होता है वो अपना यहाँ विषय नहीं, वो अकर्म रूप हो गए, उसको कहेंगे उदय। तो कहते ये कर्म रूप जो परिणमे थे उनमें तो वो शक्ति पड़ी थी, अब जब उदय काल आया तो उनमें ऐसी शक्ति होती है जो उदय काल में हीनादिक विशेष सहित जीव के ज्ञान आच्छादन आदि करते हैं। यहाँ एक कर्म का जो फल है, निमित्त है, उसको बताया ज्ञान आच्छादन, यानी जो ज्ञानावरण का कार्य है ज्ञान आच्छादन करना, ये कर्मों में ऐसी शक्ति पड़ी है कि उदय काल में उसका ऐसा जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। ये यहाँ कर्मकांड कहो, लब्धिसार कहो, ये जो कर्णानियोग के ग्रंथ है, बार बार यहाँ ये निमित्त है, ये उपादान है, ऐसी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आचार्यों को तो पता भी है, उनके शिष्यों को भी पता है, और हमारे अभी कर्तव्य है कि ये सारे निमित्त से कथन किए जाते हैं इन ग्रंथों में। बात मूल तो कार्य तो उपादान से ही होता है, परंतु वहां निमित्त बताया जाता है और उसको हम जान रहे हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि कर्णानियोग में निमित्त से कार्य होता है और द्रव्यानियोग में उपादान से होता है। तो हम निमित्त का कथन सुनने का या लिखने का निषेध नहीं है, हाँ मानने का निषेध हो रहा है। तो क्या करते हैं, ये जो उदय होता है तब उसके जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, तो हम कहेंगे ज्ञान पर आवरण डाला, आच्छादन किया, इस तरह बंद होने पर शक्ति का होना वह अनुभाग बंद है। क्या कह दें, अभी तक क्या बात चल रही थी, पहले तो स्थिति की बात बताई, कहाँ तक पड़े रहेंगे जीव के साथ, अब कहते हैं अनुभाग का बंद हुआ। जब से बंद है तब से उनमें ऐसी शक्ति पड़ी है। वो शक्ति प्रकट कब होगी, जीव को कब उसका फल मिलेगा कहेंगे या निमित्त बनेगा, उदय के समय में। अभी सत्ता में पड़े बहुत अलग अलग बंद है, हीनादिक अनुभाग के सहित बंद है, उसका जीव के साथ कुछ, वो भले उसके साथ बंधे हुए पड़े, जब उदय में आएगा तब उसके जैसे हीनादिक उसका जो फल है तो वो फल बनेगा जीव के साथ, उसको कहेंगे अनुभाग। तो ये बंद होते ही जो ऐसी शक्ति उसमें है, बंद होते समय हुए उसको कहेंगे अनुभाग बंद। उदय के समय अगर हीनादिक होकर उदय में आता है तो हम कहेंगे वो अनुभाग का उदय है, वो विषय उदय के समय चलेगा। वो विषय अभी जब सपना होती है, जब जो कुछ है, जहां जो कार्य होता है, वो तब भी बात बताएंगे। अभी तो सामान्य चर्चा चल रही है बंद के समय में अनुभाग बंद किसको कहना, तो जो परमाणु कर्म रूप हुए है उनमें ऐसी शक्ति अभी बनी है कि उदय में आने पर ऐसा फल देंगे। बाद में वो शक्ति में हीनादिकता होता है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण जो कुछ होती है बात, वो तो बाद में बताएंगे, वो अनुभाग के उदय के प्रकरण में बताएंगे। बनते समय उसमें जो अनुभाग बंधा है उसको यह अनुभाग बंध कर, यही बात। देखो इस तरह बंद होने पर शक्ति का होना वह अनुभाग बंद है। ये शक्ति उन परमाणुओं में सभी में पड़ी, अभी बंधे हुए परमाणु शक्ति सहित है, तभी तो हम उसको कर्म कहेंगे। फलदान शक्ति अपनी अपनी, प्रत्येक कर्म की अलग अलग है, प्रकृति स्वभाव को कहते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार वहाँ उसका फल मिलता है। करेला कैसा है तो कड़वा है और मिर्ची कैसी है तो तीखी है, तो उसका अपना अपना स्वभाव है। वैसे ज्ञानावरण का अपना स्वभाव अलग है, दर्शनावरण का अलग है, मुनि का अलग है, विधि का अलग है, अपना अपना अलग अलग है, और उसमें भी फलदान शक्ति हीनादिक होती है, उसको यहाँ अनुभाग बंध कहेंगे। वहाँ एक प्रकृति के एक समय में बंधे हुए परमाणुओं में नाना प्रकार की शक्ति होती है, वह कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समय में बंधे, एक समय में कितने परमाणु बंधे, तो अनंत बंधे, और उसमें कितने प्रकार की अलग अलग शक्ति, जैसे हमने स्थिति के भेद देखे, ये आबादा प्लस एक समय, दो समय, तीन समय करते करते उत्कृष्ट स्थिति तक के इतने भेद हुए, कितने हुए, अनंत हुए के कितने हुए, स्थिति के भेद कितने हुए, असंख्यात हुए, क्योंकि सागरों के है ना, तो असंख्यात हुए। अब अनुभाग के भेद कितने होते वो बताएंगे, हम पढ़ेंगे। तो इन परमाणुओं में नाना प्रकार की शक्ति, नाना यानी अनेक प्रकार की शक्ति होती है, वह कहते हैं। अब पहले में पहले शक्ति किसमें गिनना वो कहेंगे। निषेकों की स्थिति तो हम समयों में गिनते थे, काल में गिनते थे, अब यहाँ जो शक्ति है, फलदान शक्ति जो है, वो उसके शक्ति के अंशों में गिनेंगे। उस सबसे छोटे अंश को, शक्ति के सबसे छोटे अंश को, यूनिट को, एकक को अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे। अविभाग जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, शक्ति के अविभाग अंश का नाम अविभाग प्रतिच्छेद है। उनके समूह से युक्त एक परमाणु का नाम वर्ग है। अब ये कौन सा परमाणु है, तो कर्म परमाणु, क्योंकि सारे पुद्गल परमाणु भी पड़े हैं। मेरे हाथ में चौक है, इसमें भी परमाणु है, इसको तो यहाँ वर्ग नहीं कह रहे, हम कर्मों की बात कर रहे, उसको यहाँ वर्ग नाम दिया। वर्ग की क्यों कहना, उसमें शक्ति के अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेद है। जिसका जो प्रकरण होगा वहाँ वो वर्ग नाम अलग अलग, अभी हम योग स्थान देख के आए हैं, वहाँ आत्म प्रदेश को वर्ग कहा, क्योंकि उसमें योग की शक्ति होती है। यहाँ कर्म परमाणु में फलदान शक्ति है, उसके शक्ति के अमुक इतने अंश है, तो इसलिए एक एक परमाणु को एक एक वर्ग कहा। तो कहते हैं शक्ति के, शक्ति का नाम क्या, अविभाग प्रतिच्छेदों में गिनेंगे हम उसको, और उनके समूह से युक्त यानी कोई एक ऐसा कर्म परमाणु नहीं होगा कि उसमें एक दो चार विभाग प्रतिच्छेद हो गए, होते तो अनंतों में, तो उसका समूह कह दिया। उनके समूह से युक्त एक परमाणु का नाम वर्ग है। अब कहते समान अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त जो वर्ग, उनके समूह का नाम वर्गणा है। वर्गणा हम उन कर्म परमाणुओं के ग्रुप को कहेंगे। देखो जीव के प्रदेश ऐसे इतने असंख्यात प्रदेश है, हम मनुष्य की अपेक्षा करते कि सिर से लेकर पांव तक, और ये कर्म परमाणु कहां पड़े तो पूरे आत्म प्रदेशों में यूनिफॉर्मली पड़े। तो कहते कोई यहां पड़ा है ऊपर के प्रदेशों में, कोई हाथ के प्रदेशों में, कोई पैर के प्रदेशों में पड़े परमाणु, जिनकी जिनके समान समान उनकी अविभाग प्रतिच्छेद है, उन सबके ग्रुप को हम नाम देंगे वर्गणा। जैसे स्थिति में भी ऐसा ही था, ये जो हमने निषेक रचना नीचे से ऊपर तक देखी, पहला निषेक, दूसरा निषेक और अंत का निषेक, ऐसा नहीं कि पैर में पड़े और ये सिर में पड़े, जहां वहां है उनको हम केवल एक जगह ग्राफ में दिखा रहे हैं। वो ऐसे नहीं कि एक स्थिति वाले एक जगह पड़े हैं और वहां से वो बाहर निकल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप वो तो शेयर भाव ऊपर नीचे होते हैं ना, रुपए का भाव भी ऊपर नीचे होता है, तो हमारे तिजोरी में भी पैसे ऊपर नीचे होते हैं, क्या होता है? वो तो उसका ग्राफ दिखाने में आता है। ऐसे यहाँ ग्राफ है, ये नीचे के नीचे कहने कम स्थिति वाले, ऊपर कहने अधिक स्थिति वाले, वैसे भी हम अनुभाग में भी देखेंगे। तो यहां तो कहते जिन जिन परमाणुओं में, जिन जिन वर्गों में समान शक्ति है, यानी नंबर ऑफ अविभाग प्रतिच्छेद सब में सेम है, उनके समूह का नाम वर्गणा है। अभी तक शक्ति के लिए हमने कौन से तीन नाम देखे अलग अलग? अविभाग प्रतिच्छेद, वर्ग और वर्गणा। इतनी तो बात ख्याल में है। अब आगे बढ़ेंगे। वहां सबसे अल्प अनुभाग युक्त परमाणु का नाम जघन्य वर्ग है। जघन्य सबसे हीन। वर्ग क्यों कहा जघन्य? क्योंकि उसमें शक्ति सबसे कम है, मिनिमम है। उनके समूह का नाम जघन्य वर्गणा है। अब यहां तो हमने स्थिति की अपेक्षा रचना देखी थी, अब यहां वर्गणा की रचना अलग देखेंगे अनुभाग की अपेक्षा। जब अनुभाग की अपेक्षा बात करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि नीचे के निषेक में कम अनुभाग है और ऊपर के निषेक में अधिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक निषेक में अनंत परमाणु है, प्रत्येक निषेक में हीन से लेकर उत्कृष्ट तक के परमाणु पड़े। यानी यहां इसको ऐसा आड़ा करेंगे तो नीचे कम अनुभाग और ऊपर अधिक अनुभाग दिखाएंगे, परंतु मात्र अनुभाग की रचना अलग से दिखानी है तो ये हम सबसे नीचे मिनिमम अनुभाग वाले परमाणु लिखेंगे, उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद वाले अन्य जो अनुभाग वाले है वो यहां दिखाएंगे। ये वर्गणाएं हैं, ये निषेक नहीं है। निषेक तो किसको कहते? समान स्थिति वाले परमाणुओं को निषेक कहा था कर्म रचना में। अब यहां किसको कह रहे हैं? वर्गणा। समान अविभाग प्रतिच्छेद युक्त परमाणुओं को या वर्गों को वर्गणा कहा। जघन्य वर्गणाएं ने सबसे कम अनुभाग, द्वितीय वर्गणाएं ने एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा, फिर और एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा, इस तरह से करते हैं, परंतु परमाणु की संख्या कम होती चली जाती। फिर भी इतने जो अनंत वर्गणाएं हैं उनको मिलकर हम स्पर्धक कहेंगे, अभी आगे हमने पढ़ा नहीं है। उसके ऊपर ऐसे ही चय घटते क्रम से, यहां पहली जो वर्गणा थी अविभाग प्रतिमान लेते, यहां 100 डिग्री या 100 अविभाग प्रतिच्छेद थे, जहां जाकर 200 हो जाते हैं वहां से फिर एक वर्गणा, दो वर्गणा, तीन वर्गणा, इसे हम देखेंगे परमाणु की संख्या घटती है, ऊपर एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता है। मूल में हमने अनंत से शुरू किया था, कुछ बढ़ते 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 ये भी अनंत वर्गणाएं हो गई, फिर जहां जाके वो 100-200 हो जाते हैं वहां से दूसरा स्पर्धक कहलाएगा, फिर बीच में ऐसे कुछ गैप होती है, फिर ये अनेक वर्गणाएं, अनंत वर्गणा, ये तीसरा स्पर्धक, तीसरे स्पर्धक में 300 हो जाएगा, 100, 200, 300, 400, यानी कितना? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, पांच नंबर का स्पर्धक है तो 500 हो जाएगी, दसवें नंबर का है 1000 हो जाएगी, लाख नंबर का ऐसे अनंत स्पर्धक होते हैं, उतने गुना ये जगन्य वर्गणा उतनी गुना हो जाएगी, परंतु प्रति वर्गणा नंबर ऑफ परमाणु हीन होते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते चले जाते हैं, जहां जाकर इनकी संख्या आधी होगी, परमाणुओं की संख्या, अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहा है, परमाणुओं की संख्या घट रही है, जहां जाकर आधी होती है उसमें जितने नंबर ऑफ स्पर्धक हो गए उसको कहेंगे एक गुणहानि। फिर अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहा है ऊपर एक 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 से, परमाणु की संख्या घट रही है, जैसे हमने निषेक में देखा वहां स्थिति की गुणहानि कही थी, वहां एक गुणहानि में नंबर ऑफ निषेक देखे थे जहां जाके परमाणु आधे होते, अब यहां वर्गणाओं में देख रहे हैं जिस वर्गणा में जाकर परमाणु आधे हो गए वहां तक के जितने स्पर्धक है उन नंबर ऑफ स्पर्धकों को कहीं नंबर ऑफ वर्गणाओं को भी कहेंगे, वर्गणाओं में कन्वर्ट करो या स्पर्धक में कन्वर्ट करो एक ही बात, वर्गणा कहना है तो और अनंत से गुणा करो, तो उतने वर्गणाओं को या उतने स्पर्धकों को हम गुणहानि कहेंगे, ऐसे पूरी अनुभागों की रचना ऊपर तक कहेंगे तो उसमें तो इसकी रचना तो अनंतों में होगी, स्पर्धक अनंत बनेंगे, निषेक तो असंख्यात बने थे, तो ये अनुभाग की अपेक्षा बहुत सारा इसमें डिटेल्स आते हैं, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे हम। शक्ति के अविभाग अंश का नाम अविभाग प्रतिच्छेद है, उनके समूह से युक्त एक परमाणु का नाम वर्ग है, समान अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त जो वर्ग उनके समूह का नाम वर्गणा है, वहां सबसे अल्प अनुभाग युक्त परमाणु का नाम जघन्य वर्ग है, और उनके उनके ने जघन्य वर्गों के समूह का नाम जघन्य वर्गणा है। हमने सबसे नीचे जो बताया है जिसमें मिनिमम अविभाग प्रतिच्छेद थे ऐसे परमाणुओं का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे, जघन्य वर्गणा। ये बात ख्याल में आई, क्योंकि ये बातें आगे चलकर लब्धिसार में तो इन शब्दों का प्रयोग तो बारंबार होने वाला है, तो ये सभी शब्द अच्छी तरह से अभी उसका अर्थ ख्याल में आएगा तो आगे उसका भाव ख्याल में आएगा कि यहाँ क्या बात हो रही है, जब जाके हम भूल गए होंगे तो फिर आप भी पूछना हम भी आपको याद दिलाएंगे कि इसका अर्थ ये होता है, परंतु ये अभी आपकी जिम्मेदारी है, जो शब्द यहाँ हमने पढ़े हैं आगे चलकर वो शब्द आते भी है बार बार, तो आप पूछना कि इसका अर्थ मुझे दोबारा बताना, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, क्योंकि ये सारे शब्द हमारे लिए नए हैं और उसका अर्थ हम कुछ अलग ही ये कुछ तो होगा ऐसा करके वो तो विषय छूट जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो ये जघन्य वर्गणा देखी हमने, जघन्य वर्ग से एक अधिक अविभाग प्रत्यक्षर युक्त जो वर्ग उनके समूह का नाम द्वितीय वर्गणा। अभी हमने ये उदाहरण 100 का लिया था जिसमें 100 100 100 100 100 अविभाग प्रतिच्छेद है, ऐसे ग्रुप ऑफ परमाणुओं को हमने कहा जघन्य वर्गणा। दूसरी वर्गणा में प्रत्येक परमाणु में कितना अविभाग प्रतिच्छेद होगा, 101। अभी उनकी संख्या कम होती है वो इन्होंने अभी तक मेंशन नहीं किया, उन्होंने नहीं बताया, मैंने अपनी ओर से पहले बता दिया, तो ये सारे की सारे में एक एक में 101 101 101 है, हर एक परमाणु में शक्ति कितनी है, 101 है, ये अपने गणित में हो, मूल में तो अनंतों में होती है, उस अनंत में एक की वृद्धि होगी तब दूसरी वर्गणा होगी, ये द्वितीय वर्गणा हुई। इसी क्रम से एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से अधिक वर्गों के समरूप वर्गणा जहां तक होती है, एक 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 से बढ़ते बढ़ते जहां तक होती है वहां तक उन वर्गणाओं के समूह का नाम जघन्य स्पर्धक है, ये सबसे छोटा स्पर्धक। हमने क्या देखा, ये 100 से शुरुआत हुई 101 102 103 यहां तक 120 तक एक एक से बढ़ी, उसके बाद डायरेक्ट 200 वाली वर्गणा है, बीच में कोई 121 वाले 122 वाले है ही नहीं, तो जहां तक होती है एक एक से बढ़ते हुए वर्गणा जहां तक होती है उसका नाम है एक स्पर्धक। जहां ये दो गुना वाला हो जाएगा ना वहां से दूसरा स्पर्धक शुरू होता है, वो 200 से लेकर हम मान लेते 220 तक हम कहेंगे, वो भी अनंत है वो। तो कहते जहां तक होती है ये एक एक से अधिक, वहां तक ये एक एक से अधिक होती है, इसको महत्व है। एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से अधिक वर्गों के समूह वर्गणा जहां तक होती है, वहां तक उन वर्गणाओं के समूह का नाम जघन्य स्पर्धक है। अब कहते जघन्य वर्ग से दोगुणा, हमने 100 माना था तो 100 से दोगुणा 200, तो जघन्य वर्ग से दोगुणा अविभाग प्रतिच्छेद युक्त वर्गों के समूह द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती है। उसको दूसरा स्पर्धक वहां शुरू हुआ उसको उसकी पहली वर्गणा कहें। वहां भी एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हुए वर्गों के समूह को वर्गणा कहेंगे, तो ये दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा, दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा। वहां भी जहां तक एक एक से बढ़ते हैं वहां तक उसका नाम है द्वितीय स्पर्धक। अभी वो एक एक से बढ़ना बंद हुआ, बाद में डायरेक्ट अभी 300 वाली जहां होगी तो उसको कहेंगे तृतीय स्पर्धक। यानी बीच में ऐसी कोई एक एक से बढ़ती हुई वर्गणाएं नहीं है, परंतु इसमें एक बार तो उन्होंने अभी तक बताई नहीं, बताएंगे बाद में। जो यहाँ की अंतिम वर्गणा है ना, तो जिस चय से यहाँ घटता था वो वर्गणा जो दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा उसमें उसी चय से घटेगी। बीच में कुछ वर्गणाएं नहीं थी, अविभाग प्रतिच्छेद एकदम जंप मारकर बढ़ गया है, दोगुना हो गया, परंतु वर्गणा में जो घटने का चय था वो वही रहा। गुणानितक तो वही चय होता है, ये स्पर्धक बदले, बीच में वर्गणाएं नहीं थी, यहाँ की जो अंतिम वर्गणा और यहाँ की जो पहली वर्गणा दूसरे स्पर्धक की, उसमें एक चय का ही डिफरेंस है परमाणु की संख्या में। अविभाग प्रतिच्छेदों में तो यहाँ के पहला 100 था, यहाँ का 200 हो गया। अब यहाँ आएगी बात, आगे ये बात ख्याल में आती है। देखो ये जघन्य स्पर्धक किसको कहा हम फिर पढ़ेंगे इस पैराग्राफ के शुरू से। इसी क्रम से एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से अधिक वर्गों के समूह रूप वर्गणा जहां तक होती है, क्या महत्व की भाई एक एक से बढ़ने वाली वर्गणा है, उन वर्गणाओं के समूह को हमने स्पर्धक कहा, और ये सबसे नीचे का पहला है तो हम उसको जघन्य स्पर्धक कहेंगे। स्पर्धक किसे कहना ख्याल में है ना, शक्ति के अविभाग अंशों को हमने अविभाग प्रतिच्छेद कहा, इस शक्ति युक्त जो परमाणु है उसको वर्ग कहा, सबसे मिनिमम जघन्य शक्ति से युक्त परमाणुओं के समूह को जघन्य वर्गणा कही, एक 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 से बढ़ती हुई जहां तक है वर्गणा है उनका नाम हमने दिया स्पर्धक, तो ये जघन्य स्पर्धक हुआ। यहां तक बात हो गई अपनी, तो वहां तक उन वर्गणाओं के समूह का नाम जघन्य स्पर्धक है। अब कहते जघन्य वर्ग से दो गुणा अविभाग प्रतिच्छेद से युक्त वर्गों के समूह रूप द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती है, ये बात ख्याल में। बीच में जो है ना एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते हुए वो कोई वर्गणा नहीं, यहाँ हमने 120 पर समाप्त किया, डायरेक्ट 200 अविभाग प्रतिच्छेद वाली वर्गणा है, बीच में कोई है ही नहीं है, तो इसका नाम है दूसरा स्पर्धक। वहां फिर एक एक से बढ़ती हुई वर्गणाएं होगी, फिर बीच में कुछ नहीं होगा, फिर एकदम तिगुना हो जाएगा, तो इसको कहते स्पर्धक। तो द्वितीय स्पर्धक की पहली वर्गणा होती है। उसके ऊपर एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से अधिक क्रम वाले जो वर्ग है उनके समूहरूप वर्गणा जहां तक होती है, उन वर्गणाओं के समूहरूप द्वितीय स्पर्धक होता है। पहले हम पढ़ते हैं तो ऐसा समझ नहीं, जहां तक होती है उसका क्या अर्थ है जहां तक होती है, परंतु उसमें जो एक एक से बढ़ती हुई शब्द डाला है उसको महत्व है। इसी तरह तृतीय चतुर्थ आदि स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा के वर्ग में तो जघन्य स्पर्धक से 3 गुणा 4 गुणा आदि अविभाग प्रतिच्छेद जानना, क्योंकि दूसरे स्पर्धक की आदि वर्गणा में पहले स्पर्धक के आदि वर्गणा से 2 गुणा, मान लेते छठे नंबर का स्पर्धक होगा, तो अभी हमने पहले स्पर्धक की जो पहली वर्गणा में जो हमने मान लिया था 100, तो छठे स्पर्धक में वो 600 हो जाएगा। तो जो नंबर है स्पर्धक का उसमें उतने गुना वो पहले मात्र पहली वर्गणा का वर्ग कहना, क्योंकि वर्गणा में टोटल परमाणु कम होते चले जाते। यहाँ सर्व परमाणुओं के प्रमाण के ऊपर पूर्वोक्त एक एक अधिक का क्रम जानना, ऐसा विधान जब तक सभी परमाणु समाप्त होते हैं तब तक जानना, यानी जो एक एक अविभाग प्रतिच्छेद का बढ़ना समझना है, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, क्योंकि यहाँ शक्ति की बात चल रही है ना। यहाँ सर्व परमाणुओं के प्रमाण मात्र तो द्रव्य। अब हमने पहले द्रव्य स्थिति गुणहानि नाना गुणहानि अन्य बस राशि आदि संख्या देखी थी, किसमें निषेक रचना में। अब यहाँ अनुभाग की जो स्पर्धक रचना है वर्गणाएं हैं उनमें भी यही शब्द आएंगे, तभी यहाँ जो द्रव्य है वो किसको कहेंगे, टोटल समय प्रबद्ध को यहाँ द्रव्य कहेंगे पूरे। तो मेरा प्रश्न है निषेकों का समय प्रबद्ध अधिक होगा कि अनुभागों का ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। हाँ, अब क्या कहते हैं, उतने ने परमाणु तो उतने एक ही है, उतने ही भी नहीं होगे दोनों में, एक समय प्रबद्ध तो एक समय प्रबद्ध है। इसमें हमें उसके स्थिति की अपेक्षा रचना बताई, उन्हीं परमाणुओं में अनुभाग की अपेक्षा रचना, जो लॉट है वही का वही लॉट है। जैसे स्कूल में हम जाते थे तो क्या करते थे, पहले हाइट वाइज हमारे क्यू बनाते थे, है ना, एक क्लास में तो उतने स्टूडेंट्स है, फिर कैसे मार्क वाइज क्यू बनाएंगे या फिर जैसे अल्फाबेटिकल करेंगे, ऑर्डर बदल जाएगी, क्लास एक ही है, संख्या तो वही की वही। वो पूरा उदाहरण यहाँ लागू नहीं होता है क्योंकि यहाँ तो वहां तो क्यू में भी उतनी संख्या होगी, परंतु यहाँ एक एक लॉट में संख्या अलग अलग होगी, वहां तो असंख्यात भेद होगे, यहाँ अनंत भेद होगे। ख्याल में आई ना, जो बंधे हैं बंध के समय में निषेक रचना होती है, तो हमने कहा एक 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 जो निषेक बने उसकी संख्या बताई, उसमें क्या समानता थी, स्थिति की। यहाँ अनुभागों में यानी शक्ति में अनुभाग की समानता है, उसकी अपेक्षा जो परमाणुओं का जो लॉट है एक एक उसको हमने वर्गणा कहा। बात यहां तक ख्याल में, अभी आगे तो कहते हैं यहाँ सर्व परमाणुओं के प्रमाण मात्र तो द्रव्य है, जो हम समय प्रबद्ध कहेंगे, यानी जो समय प्रबद्ध वाला जो है द्रव्य जितना बांधा है उसको कहेंगे, क्योंकि बंध के समय अनुभाग की रचना चल रही है अपनी। वर्गणाओं के प्रमाण मात्र अनंत प्रमाण वाली अनुभाग की स्थिति है, इसको स्थिति कहेंगे। स्थिति किसको कहना, अभी स्पर्धकों को बीच में हटा दो, केवल वर्गणाओं को ले लो, यहाँ 20 वर्गणाएं हुई, यहाँ भी हुई, यहाँ भी हुई, इतनी जितनी वर्गणाएं बनी, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद यहाँ बढ़ा, फिर डबल डबल हुआ, फिर और बढ़ा, परंतु नंबर ऑफ वर्गणाएं जितनी बनी है, क्योंकि वर्गणाओं में अभी हम परमाणुओं को देख रहे हैं, मात्र वर्गणा वर्गणाओं को लिखेंगे हम इस तरह से निशे, उसकी भी जिसको कहीं गोपुच्छा कहते हैं, ऊपर कम होती जाती है परमाणु संख्या, कम होती चली जाती है। वर्गणाओं में हमने केवल अविभाग प्रतिच्छेद यहाँ देखे है, 100 ये शक्ति का अंश है, यहाँ हमने नंबर ऑफ परमाणु नहीं लिखे है। मान लेते यहाँ लाख परमाणु है, तो थोड़े थोड़े घटते 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 ऊपर कितने अनंत वर्गणाएं जाने पर वो लाख के 50,000 हो जाएगी, तब जाके कहेंगे एक गुणहानि हुई। तो जितनी टोटल सभी जो स्थितियां हैं यानी जितनी वर्गणाएं हैं उसको यहां स्थिति कहे, ये बात ख्याल में आई। वो निषेक रचना वाली स्थिति, कर्म की स्थिति वाली स्थिति नहीं लेना यहां पर, स्थिति यहां गणित की टर्मिनोलॉजी है। यहां क्या कहते हैं, अनंत प्रमाण वाली अनुभाग की स्थिति है। अनुभाग की स्थिति में समझ में है, जितनी नंबर ऑफ वर्गणाएं है उसको यहां स्थिति का वही बताए ना यहां पर, देखो वर्गणाओं के प्रमाण मात्र अनंत प्रमाण वाली अनुभाग की स्थिति है, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्गणाएं कितनी, तो अनंत है। एक स्पर्धक में ही अनंत होती है तो अनंत अनंत हो, सभी जब मिलकर भी अनंत होगी, यानी ये टोटल नंबर ऑफ वर्गणाएं हुई, यानी सभी स्पर्धकों की मिलकर की बात है। यथासंभव अनंत प्रमाण वाली अनुभाग संबंधी गुणहानि, नाना गुणहानि और अन्योन्य अभ्यस्य राशि और दो गुणहानि है। यथासंभव कहा, क्योंकि उसका भी विस्तार से यहां नहीं देखेंगे, वैसे तो हमने देख भी लिया था कर्मकांड में वगैरह, उसकी संदृष्टि भी देखी थी। यहां क्या कहते हैं, वर्गणाएं कितनी है, अनंत। अब जाके प्रति वर्गणा उसके परमाणु की संख्या घटते 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 अनंत वर्गणाएं जाने पर गुणहानि होती है। टोटल तो अनंत है ही है, उसमें यथा योग्य अनंत का प्रमाण जो छोटा अनंत है वो एक गुणहानि का प्रमाण, और नाना गुणहानि वो भी अनंत होगी। एक गुणहानि भी अनंत वर्गणा है, ऐसी गुणहानि कितनी बार होती है, आधा आधा अनंत बार, तो उसको कहेंगे नाना गुणहानि, वो यथा योग्य अनंत समझना। इसलिए उन्होंने शब्द क्या डाले, यथासंभव अनंत प्रमाण वाली अनुभाग संबंधी गुणहानि, नाना गुणहानि ने अनुभाग संबंधी नाना गुणहानि, क्योंकि अभी जो हमने स्थिति देखी टोटल नंबर ऑफ वर्गणा, उसको गुणहानि में जितनी वर्गणाएं होती है जिसको हम गुणहानि कहेंगे उसका भाग देंगे तो हमें नाना गुणहानि मिलेगी, अनुभाग की नाना गुणहानि। फिर जितनी अनुभाग की नाना गुणहानि है वो भी अनंतों में है, उतनी बार दो लिखकर गुणा करना तो ये अन्य बस्य राशि, वो भी अनंत में आने वाली है। इसलिए सबके लिए यथासंभव अनंत लिख दिया एक बार, और दो गुणहानि, एक गुणहानि अनंत में है तो दो गुणहानि उसके डबल हो जाएगी। इनके स्थापित कर वहां दिवड्ड गुणहानि भाजी दे पढ़मा, क्या कहते हैं, ये पहले भी हमने सूत्र देखा था, जब हम निषेक की रचना देख रहे थे तो पहले निषेक में कितने परमाणु होते हैं, तो कहते जितने परमाणु टोटल है समय प्रबद्ध के उसको डेढ़ गुणहानि से भाजित करो, तो पहले निषेक की संख्या थी। यहां की गुणहानि यानी वो स्थिति की गुणहानि लेना। अब यहां तो जो रचना हुई है वर्गणाओं की, परमाणु तो उतने ही है परंतु यहां उसकी गुणहानि वगैरह अलग है, तो यहां पहली वर्गणा में परमाणु कितने हैं, तो यहां की जो टोटल द्रव्य है वहां का टोटल द्रव्य उतना ही था, वहां की गुणहानि से भाग दिया डेढ़ गुणहानि से, तो यहां पहले निषेक में परमाणु आए, वहां तो गुणहानि असंख्यात में थी, वो परमाणु भी ज्यादा आएंगे। यहां क्या हो रहा है, इस पहली वर्गणा में कितने परमाणु आते हैं, तो यहां का जो टोटल द्रव्य है वो सेम है दोनों जगह, परंतु यहां की गुणहानि अनंतों में है, उसका डेढ़ गुणा वो भी यथायोग्य अनंत होगा, तो यहां के द्रव्य को डेढ़ गुणहानि से भाग देंगे तो पहली वर्गणा में परमाणुओं का प्रमाण आएगा, क्योंकि वही चय घटते क्रम से इसकी भी रचना है, जहां कहीं भी चय घटते क्रम से रचना होती है वहां यही सॉल्यूशन है उसका, जो टोटल द्रव्य है उसको डेढ़ गुणहानि से भाग दो तो पहला जो कोई वर्गणा है निशे के उसकी संख्या मिलेगी, इत्यादि आगे कहेंगे उस विधान से। प्रथमादि गुणहानियों की प्रथमादि वर्गणाओं में वर्गों का प्रमाण लाना, यानी वहां जो हमने देखी थी यह पहले गुणहानि का पहला स्पर्धक है, उसकी ये पहली वर्गणा है, उसमें वर्गों का इन्हें परमाणुओं की संख्या मिली है। पहले जो हमने देखा था शक्ति के अंशों की बात की थी, जो ऊपर एक एक से बढ़ते गए थे, अब यहाँ नंबर ऑफ परमाणु उस वर्गणा में कितने हैं उसकी बात चल रही है। उसका प्रमाण कैसे लाना कि यहाँ जो टोटल द्रव्य है उसको डेढ़ गुणहानि से भाग दिया तो पहली, क्योंकि यहाँ की गुणहानि भी अलग है तो यहाँ के वर्गणा का प्रमाण मिलेगा पहली वर्गणा का। तो प्रथमादि वर्गणाओं में वर्गों का प्रमाण, वर्ग ही नहीं यहाँ परमाणुओं का प्रमाण।
इसका ये संस्कृत जो लिखा है उसका क्या?
दिवड्ड यानी डेढ़, गुणहानि यानी डेढ़ गुणहानि भाज दे, यानी डेढ़ गुणहानि से भाज देने पर पढ़मा, यानी यहाँ पहली वर्गणा उसकी संख्या आती। निषेक रचना में भी यही सूत्र होता है। तो कहते प्रथमादि वर्गणाओं में वर्गों का प्रमाण लाना, ऐसी वर्गणाएं एक स्पर्धक में जितनी पाई जाती है उसका नाम एक स्पर्धक वर्गणा चलाता है। अभी हमने क्या देखा था अपने गणित में, 100, 101, 102, 120 तक, यहाँ तो 21 हो जाएगी, 100 को भी पकड़ा। अभी हमने 21 वर्गणाएं बनाई 100 से लेकर 120 तक, तो उसका नाम क्या है? एक स्पर्धक। कहते ना ऐसी वर्गणाएं एक स्पर्धक में जितनी पाई जाती है उसका नाम क्या है? एक स्पर्धक वर्गणाशला, यानी स्पर्धक में वर्गणाओं का प्रमाण। शला कहने उनकी संख्या। पुनश्च एक गुणहानि में जितने स्पर्धक पाए जाते हैं, हमने क्या देखा, ये प्रति वर्गणा घटते 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 ऊपर अनंत स्पर्धक चले जाएंगे तब जाके वर्गणा की संख्या परमाणुओं की आदि हो। तब तक के सभी स्पर्धकों का नाम है एक गुणहानि, पहली गुणहानि। स्पर्धकों को कहना है तो हम स्पर्धकों की संख्या देखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एक एक स्पर्धक की वर्गणा, वो टोटल वर्गणा मिल जाएगी आपको। तो गुणहानि में इधर आप स्पर्धक की संख्या कह सकते हैं वर्गणा की, जहां जिस अपेक्षा से कथन हो वैसे वहां जानना। देखो ऐसी ये तो होगी ना स्पर्धक वर्गणाशाला का,
पुनः
सेम होती है, प्रत्येक स्पर्धक में नंबर ऑफ वर्गणाएं सेम होती है। पुनश्च एक गुणहानि में जितने स्पर्धक पाए जाते हैं उसका नाम एक गुणहानि स्पर्धक शाला का, एक गुणहानि स्पर्धक शाला का, गुणहानि में स्पर्धकों की संख्या। यहां तक बात ख्याल में आई? हमने अविभाग प्रतिच्छेद देखे, उसका समूह वो वर्ग देखा, उनके समूह समान वाले को वर्गणा देखी, एक एक से बढ़ते हुए वर्गणाओं के समूह को हमने स्पर्धक कहा, और स्पर्धक जहां जाकर वो आधे होते हैं एक वर्गणा के परमाणु, उसको हमने गुणहानि कहा। यहां तक की बात है। इस तरह अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह वर्ग है, वर्गों का समूह वर्गणा है, वर्गणाओं का समूह स्पर्धक है, स्पर्धकों का समूह गुणहानि है। उसमें क्या कंडीशन है वो हमने देखी, केवल समूह नहीं उसमें जो जो कुछ विशेषता है उसको देखते देखते हम यहाँ तक आए। गुणहानियों का प्रमाण वही नाना गुणहानि है ऐसा जानना, यानी नंबर ऑफ टोटल गुणहानियां कितनी होगी, यह कथन गोमर सार में भी है और यहां भी आगे अच्छी तरह से कहेंगे। आगे क्या लिखने जाने वाले है वो तो पूरा विषय इनके ख्याल में था, तो कहते आगे यहाँ भी बताने वाले हैं। यहाँ तो केवल भूमिका के रूप से इन शब्दों का अर्थ खोलकर बता रहे हैं। अब यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा।